ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नौवां स्कंद अध्याय 6 सौभ्र मुनि का पतन श्लोक संख्या 52 से 54 52 तत्र तप्त्वा तपः तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सह एव अग्निभिः आत्मानं युयोज परम आत्मनि तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सह वैज्ञाभिर् आत्मानं युयोज परमात्मनि तत्र तत्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सह वैज्ञाभि आत्मानम् युयोज परमात्मने तत्र तत्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मदर्शनम् आत्मवान् सहैवाग्नाभिरात्मानम् युयोज परमात्मने धन्यवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की तत्र जंगल में तप्त्वा तपस्या करते हुए तपः तपस्या के नियम तीक्ष्णम् अत्यंत कठोर आत्मदर्शनम् आत्म साक्षात्कार में सहायक आत्मवान आत्म से अभिज्ञ सह साथ में एवा निश्चय ही अग्नि भी ही अग्नियों के आत्मानं स्वयं को युयोजा लगाया परम आत्मनि परमात्मा में अनुवाद जब आत्मवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया कृपया दोहराएं जब आत्मवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया तात्पर्य मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है तो वह भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम वापस जाता है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति वह भगवत धाम को वापस जाता है इस तरह ऐसा लगता है कि सौभ्री मुनि को वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी इससे पहले के दो श्लोक इनमें तात्पर्य नहीं है परंतु अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक संख्या 52 ये सौभ्री मुनि बोल रहे हैं शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था किंतु बाद में मैथुन रथ मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने एक 100 पुत्र उत्पन्न किए इस तरह मेरा परिवार में 5000 सदस्य हो गए प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है श्लोक संख्या 53। इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गए। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चले गए। पति परायणा पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय ना था। और फिर आज का श्लोक है, जब आत्मवान सौबरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, और यह अध्याय चल रहा है सौबरी मुनि का पतन। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत से अनेक प्रसंग आते हैं, आप स्कंद पहले स्कंद से देखकर 12वें स्कंद तक देखेंगे, अब बहुत सारी केस स्टडीज हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, और हर केस स्टडीज में एक चीज कॉमन है, क्या? कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही कैसे होती है? परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार से हुआ और उनका अंत किस प्रकार से हुआ? अगर आप संसार की कोई भी मूवी देख लें, कोई भी नॉवल देख लें, या किसी जो भी अच्छी हिट मूवी हुई है या नॉवल जो बेस्ट सेलिंग नॉवल्स हैं, उनकी स्टोरीज का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री। एक्ट वन में क्या दिखाते हैं? सबसे पहले वर्तमान स्थिति या कोई पुराने काल का पूरा वर्णन रहता है, और उसके जो मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन और आपस में उनका क्या संबंध है। फिर तभी कुछ ना कुछ उस मुख्य कैरेक्टर के जीवन में कुछ एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है जिससे उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। उसको कुछ ना कुछ समस्या आती है या कोई संघर्ष होता है या एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट का वर्णन आता है। अब उसको करने का वो प्रयास, उसको सॉल्व करने का, उससे जूझने का प्रयास करता है, परंतु कोई बात नहीं बनती। तो ये हमें ले जाता है एक्ट टू में। किसी भी स्टोरी का स्ट्रक्चर ही होगा, एक्ट टू में क्या होगा? एक्ट टू में उसकी एक्चुअल जो यात्रा है, एक्चुअल जर्नी है, उसका वर्णन किया जाता है कि उसने, उसके पास जो पहले से ज्ञान है, पहले से जो उसके पास स्किल्स हैं, उससे वो उस समस्या का हल करने का प्रयास करता है, परंतु देखता है कि जो वो कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है। उसको कुछ ना कुछ शिक्षा सीखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको नई चीज़ अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। और साधारणतः यहाँ पर एक कोई सपोर्टिंग रोल आता है, कोई मेंटर, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी बहुत सहायता करता है। फिर फाइनल आता है एक्ट थ्री। एक्ट वन में, एक्ट वन के एंड में क्या होता है? कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हीरो को हीरोइन मिलेगी, क्या विलेन पकड़ा जाएगा, या जो उसके जीवन में समस्या आ रही है कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा, जिसका उत्तर मिलता है एक्ट थ्री में फाइनली। अब एक्ट टू में उसके पास कुछ ना कुछ स्किल आ गया है, कुछ ना कुछ उसके जो लेसन्स हैं वो उसने सीख लिए हैं। अब वो दोबारा उस सीन में जाता है, एक्ट वन में वही समस्याएं हैं, वही परिस्थितियां हैं, परंतु उसका दृष्टिकोण अब बदल चुका है। अब उसके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नया ऐसे कुछ ना कुछ, उसको जो भय थे अंदर, जो एक किसी चीज का सामना करने के लिए वो भय का सामना कर सकता है, या कुछ ऐसे डिसीजंस जो बहुत ही क्रिटिकल थे वो डिसीजंस ले लेता है जो बहुत ही मुश्किल थे उसके जीवन में, और अंततः वो विजय प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखें जो सभी इस प्रकार के स्टोरीज का मूल स्रोत है, जहाँ पर, और ये बिल्कुल सत्य कथाएं हैं, पूरे के पूरे भागवतम में जितने भी प्रसंग देख लें, चाहे वो भरत महाराज का हो, भरत, आप सोचिए अगर इस प्रकार की कथा होती कि भरत महाराज सब कुछ जंगल छोड़ के गए, वहाँ उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया, हम में से कितने लोगों का अटेंशन कैप्चर होता? या ऐसी कथा होती सौबरी मुनि जल के अंदर गए, बहुत तपस्या की उन्होंने और अंततः उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, हम में से कितने लोग प्रेरणा ले पाते इस ऐसे से? परंतु उन्हें किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो तो क्या दिखाओ? कुछ ना कुछ क्राइसिस, कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ क्लेश, कुछ ना कुछ बड़ा हो गया, तभी उसका ध्यान आकर्षित होता है। अब परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा हैं, परंतु उनको शाप मिल गया, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। दक्ष प्रजापति, उनकी सभा चल रही है, भगवान शिव ने उनको सम्मान नहीं दिया, तो तुरंत उन्होंने शाप दे दिया, और उसके बाद घमासान युद्ध हुआ, दक्ष के फॉलोअर्स में, भगवान शिव के फॉलोअर्स में। महाराज चित्रकेतु, भगवान के दर्शन हुए, उन्हें प्राप्त हुए, परंतु तुरंत किसी ना किसी कारणवश पार्वती माता जी से उन्हें श्राप मिला, और किस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, तो कितने ही प्रसंग देखे हैं। अजामिल किस प्रकार से पतन हुआ, अंत में उसके साथ क्या हुआ, किस तरह परिस्थिति बदली और कैसे उसने सिद्धि प्राप्त की। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे सभी प्रसंग में कुछ ना कुछ क्राइसिस हाईलाइट किया गया है, और यहां पर भी हम देखते हैं कि सौबरी मुनि के जीवन में क्या क्राइसिस है। वो वृंदावन में यमुना के जल के भीतर जाकर तपस्या कर रहे हैं, ये उनका योग बल था, परंतु उन्होंने उस स्थान में भी दो मछलियों को आपस में संबंध बनाते देखा, और उससे उनका मन विचलित हो गया, उनके अंदर विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, और वो इच्छा इतनी प्रबल प्रगाढ़ थी कि वो यमुना से बाहर निकल कर गए, और राजा मंदाता के पास जाके उन्होंने कहा कि मुझे आपकी पुत्रियों से विवाह करना है, और वो इतने सालों तक तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर पूरी तरह से पानी के अंदर थे, गल चुका था, बूढ़ा हो चुका था, जो त्वचाएं लटक रही थी, और राजा अब किस प्रकार से मना करें, क्योंकि इतना शक्तिशाली वो मुनि थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्रियां हैं, 50 पुत्रियां, आप में से जो भी पुत्री आपको चुनती है तो उनसे आप विवाह कर लीजिए, डायरेक्टली मना नहीं कर सकते थे। तो ये सौबरी मुनि भी समझ गए। जय श्री श्री राधा राधिकरमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। सौबरी मुनि भी समझ गए कि ये किस प्रकार से मुझे टाल रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा बहुत ही सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित किया, और उसके बाद वो महल में गए, और महल में गए तो 500 जो उनकी पुत्रियां थी राजा की, उनके अंदर आपस में बहुत विवाद होने लगा कि इनसे कौन विवाह करेगा, कि ये मेरे योग्य हैं। दूसरी उनकी जो बहनें हैं वो कह रही, नहीं मैं इनसे विवाह करूंगी। तो सौबरी मुनि 50 की 50 पुत्रियों को ग्रहण करते हैं, और अपने मंत्रों के द्वारा उनको इतना भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं कि जो राजा मंदाता थे, जो पूरी पृथ्वी 7 तो द्वीप के राजा थे, उनको भी आश्चर्य हुआ, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, बट बहुत ही विस्मय हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने इतना ऐश्वर्य प्रदान किया है। और अब आज के जो श्लोक हैं उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता था, परंतु किस प्रकार से संगति ने मैंने इन 50 कन्याओं से विवाह किया, और हर कन्या से कितने पुत्र उत्पन्न किए, 100। तो उनका फैमिली कितना बड़ा हुआ, 5,000 का इतना बड़ा फैमिली था सौबरी मुनि का। और इसके बाद इतना बड़ा परिवार करने के बाद उनके अंदर वापस वैराग्य आया, और वो चले वानप्रस्थ आश्रम की ओर, और वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है, तपस्या। वहां पर जाके उन्होंने तपस्या की, और किस प्रकार की तपस्या की, जो आज के श्लोक में लिखा है, तत्र तप्त्वा, तत्र मतलब वहां गए, किस लिए, तप्त्वा तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तपा तीक्ष्णम, किस प्रकार की तपस्या, अत्यंत कठोर तपस्या। इसलिए ये तपस्या क्यों की, आत्मदर्शनम, आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने के लिए, आत्मवान जो आत्म से अभिज्ञ है, सह एव, एव मतलब निश्चय ही, अग्नि भी, अग्नि जब जीवन के अंत में जो अग्नि जलाई गई उनके शरीर में, आत्मानम, आप खुद को योजा लगाया, किसमें, परम आत्मनि, भगवान की सेवा में। जिस प्रकार से हम बता रहे थे, पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम का कोई भी प्रसंग है, उसका पहला स्टार्टिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन। एक्ट टू क्या होगा? सीन, उसमें जो क्राइसिस है, एक्ट टू में किस प्रकार से प्रयास किया और एक्ट थ्री में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो ये इस मुख्य प्रसंग से मैं 5 पॉइंट्स संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, जिसमें से पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। श्रील प्रभुपाद 1922 में जब पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो वो राष्ट्रवादी थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे। जब उनका भेंट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुआ, तो उनके हृदय में परिवर्तन आया कि उन्होंने राष्ट्रवाद छोड़कर, उन्हें पता चला कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, ये असली समाधान है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में क्या आया? परिवर्तन आया। अर्जुन, जो अध्याय 1 भगवत गीता में जो अर्जुन है, और पूरी गीता पढ़ने के बाद अध्याय 18 के अर्जुन, उनमें क्या आया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? परिवर्तन। अजामिल, किस प्रकार से उन्होंने वेश्या से विवाह किया, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने उनसे 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, परंतु जीवन के अंत में उन्हें विष्णु दूत का संग प्राप्त हुआ और उनके अंदर क्या आया? परिवर्तन। नारद मुनि के प्रभाव से जो शिकारी थे, मृगारी, मृगारी इस प्रकार का उसका हृदय था कि वो जानवरों को अधमरा छोड़ देता था, परंतु नारद मुनि के संग से वो इतना परिवर्तित हो गया कि एक चींटी पर पैर रखने के लिए भी वो घबरा रहा था। तो पूरे के पूरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। तो ये आज का पहला पॉइंट है, क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारा शरीर तो समय के साथ परिवर्तन होकर ही रहा है, परंतु असली जो ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय का जो परिवर्तन है, ये 84 लाख योनियों में से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है, और किसी योनि में संभव नहीं है। आप किसी अन्य पशु को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं कि जब छड़ी दिखाई जाए तभी खाना मांगने आना है, या उसको ट्रेन करते हैं कि घर में स्टूल पास नहीं करना, बाहर जाके करना है ना। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी 4 पैराडाइम में थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे कर सकते हैं कर सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें ये हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है। और पूरे के पूरे आध्यात्मिक जीवन, पूरे के पूरे जो प्रोसेस है श्रवणम कीर्तनम का, इसका उद्देश्य क्या है? परिवर्तन। और अगर हम खुद के जीवन में देखें, ये परिवर्तन आता किस प्रकार से है? व्हाट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पावरफुल एस्पेक्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? 2 चीजें हैं। पहला, यस ब्रो, इंस्पिरेशन। ओके, प्रेरणा कि बदलना है, कुछ करना है। ठीक है, अगर मान लो मेरे प्रेरणा भी नहीं है कि मैं नहीं बदलना चाहता, कि मैं जैसा मैं वैसे ही रहना चाहता, फिर क्या? यस ब्रो, एसोसिएशन, संघ से आता है परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड? हैं, तो दोनों तरफ आ सकता है, ब्लैक टू व्हाइट भी और गोल्डन टू ब्लैक, ब्लैक टू गोल्डन, है ना। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन हार्ट, दैट्स व्हाई गोल्डन कलर। कैसे परिवर्तन आ सकता है? हम खुद के जीवन में देखें। आप में से जो कितने भक्त हैं यहाँ पर बैठे हैं, आपने किसी समय सोचा था कि आप धोती कुर्ता पहन के एक श्रीमद् भागवतम कक्षा क्लास अटेंड कर रहे होंगे एक मंदिर में? कभी कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था कि किसी समय कि मैं सैफरन में बैठ के व्यास आसन में बैठ के श्रीमद् भागवतम पुराण के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। किसने सोचा था कि हम तिलक लगाएंगे? जब हम बचपन में थे किसी को तिलक लगाते हुए देखते थे तो कितना मजाक उड़ाते थे। अभी हमारा मजाक उड़ता है और लग रहा है कि पंडित जी आ गए। और तिलक भी कैसे, पहले तिलक होता था छोटा, अब पूरा का पूरा बड़ा, इतना बड़ा तिलक। कितने भक्तों ने सोचा था कि वो हेड शेव करेंगे? हेड शेव तो अकल्पनीय था किसी जमाने में, जब तक कोई मूवी स्टार या स्पोर्ट्स स्टार या ऐसा करंट ट्रेंड ना हो तो हेड शेव कराने का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। हाँ, बुरा भी मानते थे कि घर में कुछ अशुभ हो गया शायद, इसलिए हेड शेव कराया। तो किस कितने प्रकार के परिवर्तन आए। तो एक जीव, एक भक्त, अब ये परिवर्तन किस प्रकार से आए? निश्चित रूप से भक्तों के संग से। ये और क्या चीज ट्रांसफॉर्मेशन लाती है? मुख्य संग है ट्रांसफॉर्म। एक दूसरी चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है हृदय का, वो है आहार। जिस प्रकार का हम आहार लेते हैं, एक तरह से वो जो खाना बना रहा है उसका हम संग ले रहे हैं, उसकी चेतना उस आहार में जाती है, उस आहार से हमारी वही चेतना विकसित होती है। तो ये भी संग का ही है। एसोसिएशन एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज आवर इंटेंशन, उद्देश्य। क्योंकि अगर इंटेंशन नहीं है तो एसोसिएशन भी एक सर्टेन लेवल तक ही एक्ट करता है। अभी न्यू ईयर का समय है और न्यू ईयर के समय हम अलग अलग रेजोल्यूशंस के बारे में बहुत बोला जाता है, और ये भी बताया जाता है कि जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं तो 90% 15 जनवरी तक टूट चुके होते हैं। बट अगर ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन फिर भी लोग लेते हैं, क्यों? कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज जो उनके जीवन में बाधा डाल रही है उसको वो परिवर्तित करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हैबिट, कुछ ना कुछ एक वाव लेते हैं कि जिससे वो ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर उसको पूरे साल बनाए रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वैसे लोगों का संग ढूंढें और उनके संगति में रहें। तो दैट इज फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। नाउ सेकेंड थिंग जो मुझे इसके प्रसंग से मिला, इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अगर हम सौबरी मुनि का जीवन देखें, जब वो जल से निकले गए थे, अगर सिर्फ उसी श्लोक तक पढ़े, सौबरी मुनि किस प्रकार से जल में तपस्या कर रहे थे, जल से बाहर निकले और 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, और किस प्रकार से हर कन्या के साथ, हर पत्नी के साथ 100 पुत्रों की उत्पत्ति की, और यहां पढ़कर भागवतम बंद कर दें, इसके आगे के प्यारों में ना जाए, सिर्फ इतना उनके थोड़ा सा जूम इन करें उनकी लाइफ पे, सिर्फ इतने फेज को, तो क्या कोई सोचेगा उनके जीवन के बारे में? हम क्या सोचेंगे सौबरी मुनि किस प्रकार के व्यक्ति हैं? उन्होंने कितना घोर वैष्णव अपराध किया गरुड़ जी के प्रति, और किस प्रकार से उनका पतन हो गया, और कितना उन्होंने निंदनीय कार्य किया, कितने निंदनीय वो व्यक्ति हैं। परंतु अगर आगे के प्यार नहीं पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऐसी अवस्था होने के बाद भी उन्होंने दोबारा से निश्चय के साथ वानप्रस्थ गए, किस लिए? तीक्ष्ण तपस्या करने के लिए, और उनका अंत क्या हुआ? परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया। तो एक बार एक पिता थे और उनके 4 पुत्र थे, तो थोड़ी दूर पर एक पियर ट्री था, पियर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसका वृक्ष था। तो उन्होंने चारों अपने पुत्रों को भेजा कि जाओ और उस वृक्ष को देख के आओ, और तुमने क्या देखा उसको मुझे बताना। तो जो पहला पुत्र था वो गया सर्दी के मौसम में, दूसरा पुत्र गया फॉल के समय, तीसरा गया समर के समय, और चौथा गया स्प्रिंग के समय। तो पहला जो पुत्र है उसने, जब वो चारों वापस आ गए तो पिता ने सबको एक साथ बिठाया और पूछा कि कि तुमने क्या देखा उस वृक्ष के बारे में। तो पहला पुत्र कहता है कि वो तो बहुत ही बेकार वृक्ष है, हर जगह से मुड़ा हुआ है, एक भी उस पर पत्ती नहीं है और बिल्कुल किसी काम का वो वृक्ष नहीं है, इट्स अ वेरी अगली ट्री। परंतु दूसरा, जैसे ही दूसरे पुत्र ने ये बात सुनी, उसने कहा नहीं नहीं ये तो गलत कह रहा है, मैंने देखा उस पर छोटी छोटी हरी कलियां हैं एंड इट इज फुल ऑफ प्रोमिसेस कि उसका एक बहुत ही सुंदर भविष्य है, ऐसा वो वृक्ष है। तो तीसरे का, तुम भविष्य की क्या बात कर रहे हो, मैंने देखा उस पर तुम छोटी कलियों की बात कर रहे हो, उस पर तो बहुत सारी हरी भरी पत्तियां हैं और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो चौथे पुत्र ने कहा कि नहीं नहीं उस पर तो बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। तो पिता ने क्या कहा कि आप चारों ठीक कह रहे हैं, परंतु आप सबने सिर्फ उसका पूरे जीवन का एक ही फेस ऑब्जर्व किया है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति को समझने के लिए, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी होती है, जैसे ही उसको हम कुछ करते हुए देखते हैं तो तुरंत माइंड में क्या आता है, जजमेंट पास हो जाती है कि ये तो ऐसा ही है। तो दैट इज माई सेकेंड लेसन विच आई कैन टुक फ्रॉम दिस टीचिंग। इस्कॉन में किस किस प्रकार के जजमेंट्स होते हैं, किस हम लोगों को भक्तों के समाज में की अगर बात करें, किस किस प्रकार के लेबल्स हम भक्तों पे लगा सकते हैं। हमारे जेब में कई सारे लेबल्स हैं और मुख्यतः आप लगाएंगे 10-15 लेबल्स हैं। तो जिसको जैसे करते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, एक लेबल लेते हैं और उसके माथे पे पोस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए अगर ये एक लेबल है ना कि ये असुरिक व्यक्ति है, डीमन है, और उसके माथे पे पेस्ट कर दिया जाए यहाँ पे, है ना, उसको उसको बार बार कह के कि ये बिल्कुल डीमन है, या दूसरा लेबल क्या है, रह गया शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। अगर किसी का लेबल है यहां पर प्योर डिवोटी, है ना, तो इसमें कोई कह सकता है दिक्कत क्या है, मैं जानता हूं वो है प्योर डिवोटी और ये है असुर, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आत्मा चलायमान होती है या स्टेगनेंट होती है, इट्स अ वेरी डायनेमिक लिंक फोर्स। बट एज सुन एज वी पुट अ लेबल ऑन अ पर्सन, हमने क्या कर दिया, उस पूरे के पूरे व्यक्ति का जो जीवन है उसको एक बॉक्स में डाल के और उस बॉक्स पे लेबल कर दिया टीम में, और इट इज नॉट प्रॉपरली ऑनरिंग दैट लिविंग एंटिटी। और क्या क्या लेबल्स यूज करते हैं आम जीवन में या भक्तों के समाज में, आलसी, ये बहुत आलसी भक्त, और बहुत करुणामय, कंपैशनेट और पैशनेट, बहुत पैशनेट भक्त है, कंपैशनेट, और हमें ये नहीं देखना कि हम और किसको देखते हैं। आप अपने जीवन में सोचिए हमें क्या क्या लेबल्स मिल चुके हैं घर 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 में या बाहर मंदिर में,
दुर्वासा का अवतार
दुरासा कि ये प्रभु जी बहुत ही क्रोध करने वाले प्रभु जी हैं, और एक है ये प्रभु जी बहुत सेंटिमेंटल है, भावुक भावुक स्तर पे हैं, ये वाले प्रभु जी या माता जी, ये माता जी अपने आप में एक लेबल है, ओ शी इज जस्ट अ माता जी, पीपल से लाइक, या फिर ये माया में है, या ये बहुत विनम्र है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जज नहीं करना चाहिए, जजमेंट का एक अपना रोल है, परंतु उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, परहैप्स यू कैन से, ये बताने के बजाय कि ये बहुत ही निकम्मा और आलसी भक्त है, एटलीस्ट अगर हम ये कहें कि मैंने तुम्हें 3 बार काम दिया और तीनों बार मेरे को वो काम पूरा नहीं मिला, तो एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं जिस पे वो वर्क कर सकता है। टेलिंग समवन दैट यू आर लेजी डजंट हेल्प दैट, या इवन टेलिंग समवन यू आर वेरी हम्बल कि आप बहुत विनम्र भक्त हैं, तो भी इससे क्या फर्क। एटलीस्ट अगर मैं ये बताएं कि मैंने देखा है कि जब भी आप मंदिर आते हैं कम से कम 10 बार प्रणाम करते हैं हर अर्चविग्राहों को जो पहले भक्त मिलते हैं उनको, तो एटलीस्ट उसको भी पता होगा कि हाँ मेरी किस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसको वो रिपीट करेगा. सो दैट इज, और तुरंत एक बार से जज कर देना कि ऐसा हमारे साथ, मेरे साथ कई बार हो चुका है. मैं आश्रम में गया, देखा एक भक्त सो रहे हैं और टाइम है 7 बजे सुबह का, तो तुरंत पहला विचार क्या है, यार ये कुछ नहीं हो सकता है. परंतु फिर बाद में पता चला कि रात में 2 बजे किसी भक्त की तबीयत खराब थी और वो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, और वहाँ पे करने के बाद वो वापस 4 बजे आके सोए हैं और मैं खुद 4:15 उठा हूँ. तो इट्स अ कंप्लीट शॉक. तो इतना जब भी ऐसी टेंडेंसी हो तो थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक लें. हाँ, देखने और समझने में बहुत फर्क होता है. सो दैट इज अ सेकेंड थिंग अबाउट पुटिंग लेबर्स. थर्ड, विच शिला प्रभुपाद हिमसेल्फ मेंशंस इन पर्पट, प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रसंग से एक टीचिंग तो निश्चित रूप से ले लेनी चाहिए. अगर आपने पिछले श्लोकों का तात्पर्य पढ़ा हो तो कोई बताना चाहेगा? वी मस्ट लर्न. एक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं श्लोक संख्या 48 के तात्पर्य में, देयरफॉर द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू सेटिस्फाई मटीरियल डिजायर्स बाय केटरिंग टू वंस मटीरियल डिमांड्स विल नेवर बी सक्सेसफुल. क्या मतलब हुआ? भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास भौतिक माध्यम से कभी भी सफल नहीं होगा. आपने अब तक पिछले जितनी भी उम्र है, आपने जीवा को जितनी बार भी अच्छा खाना खिलाया, एक बार भी ऐसे जीवा आई है आपके सामने और कहे मैं आपके लिए इतनी कृतज्ञ हूं कि आप मेरी इतनी सेवा करते हैं और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं? कोई भी इंद्रिय आके ऐसे कहेगी? नहीं. हमेशा इट विल आस्क फॉर मोर एंड मोर. काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णे अनिर्णय. भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि काम अग्नि किस प्रकार से है, उसमें अग्नि की तरह जलती है और कभी भी संतुष्ट नहीं होती, उसमें जितना मर्जी आप ईंधन डालें. सो दैट इज द टीचिंग नंबर थर्ड. भौतिक इच्छाओं को भौतिक माध्यम से, उसका जो वो डिजायर कर रहा है उसको वो देने मात्र से हम अगर लग रहा है कि वो खत्म हो जाएंगे या संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा. और वो किस प्रकार से है, दैट इज द टीचिंग नंबर थर्ड. ये शायद आपने पहले भी देखा हो और मुझे लगा कि इसको करके दिखाना चाहिए. और किसकी तरह से वो बताया गया है? अग्नि की तरह. भौतिक इच्छाएं किस प्रकार से है? और वो और इसको पूरा करने किसके समान है? इसमें मैं सोच रहा हूं कि ये सेटिस्फाई होगा, बट क्या हुआ? अग्नि और बढ़ेगा. तो अग्नि अगर इसको खत्म करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? तो वो पानी क्या है? संसार दाव नलली धलोक त्राणाय करुण्य घना घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणा नमस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद. कि जो गुरु है वो भगवान कृष्ण का जो कृपा का अथाह सागर है, वहां से वो पानी लेते हैं और बादल के रूप में आते हैं और वर्षा करते हैं. तो शुद्ध भक्तों की कृपा से जब ये भक्ति का मार्ग मिलता है, ये प्रोसेस मिलता है, इस माध्यम से इन भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट किया जा सकता है. कि जो इंद्रियों की नीड है उसको उसको हम रिस्ट्रेन नहीं कर रहे, परंतु उसको स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं. अगर जीवा की इच्छा है अच्छा अच्छा खाना खाने की, तो भोग लगा के खाएं, शुद्ध आहार लें। अगर आंखों की इच्छा है अच्छा अच्छा रूप देखने की, तो अलग अलग प्रकार के चलचित्र, अलग प्रकार के हीरो हीरोइन, इनके शरीर को ना देख के भगवान की दिव्य सुंदरता को देखें। इस प्रकार से हर इंद्रिय का। चौथा, इसके अगले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज द लेसन वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट कंसर्निंग सौवरी मुनि। कौन सा लेसन वी मस्ट लर्न? वन शुड नॉट देयर फॉर इम्पीड द एक्टिविटीज ऑफ अ वैष्णव। किसी शुद्ध भक्त के जो कार्यकलाप है उसमें क्या नहीं करना चाहिए? उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, पत्थर नहीं बनना चाहिए। तो किस प्रकार से किसी वैष्णव के कार्यकलाप का रोड़ा बना जाता है? आम आम और ये सबसे ज्यादा तब होता है, हाँ, निंदा करके। हमें अगर अवलोकन करें तो ये देखना चाहिए कि मेरे ऐसे कौन से कार्यकलाप हैं जिससे हो सकता है जो सामने वाला भक्त है उसको दुख पहुंच रहा हो या ठेस पहुंच रहा हो। ये नहीं कि मान लीजिए इस क्लास के बाद कि प्रभु जी ने, ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, प्रभु जी आप मेरे रास्ते का, मेरे जो कार्यकलाप है उसमें आप बाधा मत बनिए, ये लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। ये अर्थ नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स लुकिंग विद इन, नॉट लुकिंग आउट। तो किस प्रकार से हम, मेरा व्यवहार, मेरे शब्द किसी अन्य वैष्णव के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए शायद उसको दुख पहुंचा रहे हो या उसके किसी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हो, और उसको मैं किस प्रकार से इंप्रूव कर सकता हूं। और आखिरी पांचवा, जो आज के श्लोक में बताया, ग्लोरियस पासिंग ऑफ सौबरी मुनि, कि सौबरी मुनि का जो मृत्यु था कितनी महान, कितना ग्लोरियस था, कि जीवन के अंत में उन्होंने भगवान की सेवा की अंतिम समय में। तो और यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं मृत्यु का क्या विज्ञान है। आज पूरे के पूरे संसार में, पूरे के पूरे एजुकेशनल सिस्टम में 20 25 30 साल पढ़ने के बाद भी व्यक्ति ये दो तीन क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाता। हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ, कि ये जो डेथ है इसका क्या विज्ञान है। बर्थ का भी नहीं पता उन्हें तो ठीक से, परंतु मृत्यु का ये के लिए बहुत मिस्ट्री है। और अधिकतर लोगों का क्या मिसकंसेप्शन है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, दिस इज ओनली वन लाइफ विच वी गेट और इसी इसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। इन धारणाओं के ऊपर ही हमारी जीवन शैली निर्भर करती है। तो जिसको मृत्यु का विज्ञान पता है उसका जो प्रोसेस लाइफस्टाइल होगा और जिसको नहीं पता उस पर बहुत अंतर होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अभी वर्तमान में जो भी हमारे जीवन में घट रहा है या जिस भी हम परिस्थिति में हैं वो किसका परिणाम है या वो किस पे निर्भर करता है? जो प्रेजेंट टेंस में मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, आप में से कितनों को लगता है पूर्व कर्मों का? और कोई किसी पे? यस भाई, हाँ, कृष्णा सैंक्शन करते हैं, ठीक है, वो तो है। अगर मैं आपको कहूं आपके लाइफ में जो प्रेजेंट में हो रहा है इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर पास्ट लाइफ, इट टोटली एंड टोटली विल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज what future you want for yourself. For example, एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो बिल्डिंग किस आधार पर उसका निर्माण किया जा रहा है? जैसा उसका ब्लूप्रिंट है, जैसा उसका डेस्टिनेशन वो बनना चाहता है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर सौबरी मुनि का जो मृत्यु है, या पूरे श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक चरित्रों का जो अंतिम गंतव्य है उसका वर्णन किया है, परीक्षित महाराज ने किस प्रकार शरीर छोड़ा, जड़ भारत महाराज ने किस प्रकार छोड़ा, वृत्तासुर ने किस प्रकार शरीर छोड़ा। तो अगर हम बिगिन करेंगे, बिगिन बाय टेकिंग सीइंग एंड, कि जो किस प्रकार का हम अपना अंत चाहते हैं, अगर उसको कंटेम्पलेट करें, क्या लक्ष्य है, उस प्रकार से हमारा प्रेजेंट रिस्पॉन्स रहेगा, प्रेजेंट कार्यकलाप रहेंगे। इज इट नॉट? निश्चित रूप से पुराने कर्मों का, और वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, परंतु उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस प्रकार का भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं वर्तमान में एक्ट करूंगा। क्योंकि भूतकाल में जो हो गया वो हो गया, भविष्य अभी आना है, बट अभी मेरे पास क्या है, प्रेजेंट, और उस प्रेजेंट में किस तरह एक्ट कर सकता हूँ, किस प्रकार का गंतव्य डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ। That is about death. So, in summary, five things, पांच चीजें जिस पे मैंने चर्चा की। सबसे पहला transformation, दूसरा labels, सौबरी मुनि के जीवन से सिर्फ एक aspect को देख के जज ना करें, see the overall picture. Third was Third was this, material desires. It can never be satisfied by material means. To satisfy them requires grace, process of devotional service. Fourth, किसी के रास्ते का रोड़ा ना बने। अगर रोड़ा बनना ही है, तो जो लोग भगवत चेतना के प्रचार करने में बाधा है, या जो आसुरिक मानसिकता है, उनके मार्ग भाग में रोड़ा पड़े, भक्तों के मार्ग में रोड़ा नहीं पड़ना, यहाँ वो लिखा वैष्णव कर। और पांचवा, फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ डाइंग एंड बिगिन विद द एंड इन द माइंड। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या टिप्पणी हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू भाजी। आप बता रहे थे कि जजमेंट हमें नहीं करना चाहिए ड्यूटीज का, तो आपने प्रॉपर जजमेंट भी बताया था, तो थोड़ा उसको इलेबरेट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक अ प्रॉपर जजमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जजमेंट करेंगे, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव।
मैंने ये नहीं कहा कि जजमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जजमेंट का अपना रोल है। जजमेंट दो प्रकार से होता है, वन इज बाय पुटिंग स्टैटिक लेबल्स ऑन एवरीवन, कि सब पे हम अलग अलग लेबल लगा दें, जिस प्रकार की जो हमने चर्चा की। परंतु एक दूसरे प्रकार का जजमेंट भी होता है जो उस मोमेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, और जिस टीम मेंबर ने जाना है वो बहुत लेट कर रहा है, लेट्स से, तो एक तरीका है कहने का, प्रभु जी आप बहुत इनसिंसियर हो, आप सीरियस नहीं हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, ये एक प्रकार का लेवल। दूसरे प्रकार का जो है वो पर्सनल आई के टर्म्स में कह सकते हैं, रेदर देन पुटिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ देम, वी कैन स्टेट द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन। प्रभु जी हमने डिसाइड किया था हम सुबह 10 बजे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के निकलेंगे, इट्स ऑलरेडी 10:15 एंड आई एम बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री बिकॉज मेरी आवश्यकता है, आई हैव अ नीड फॉर पंचुअलिटी, would you be willing to join in for next in? मैंने कोई लेवल को जज नहीं किया, लेवल नहीं किया, बट मैंने सारा अपने फर्स्ट पर्सन के टर्म्स में रखा, is it not? क्योंकि जब भी हम दूसरे वाले के ऊपर बाहर अपने से रखेंगे, तो किसको बदलना है, दूसरे वाले को। इफ आई कीप इट इन टर्म्स ऑफ आई, कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं एंग्री हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं पंचुअलिटी को बहुत वैल्यू करता हूँ. स्टिल मैं कुछ ना कुछ अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग, मेरी नीड, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स एंड नीड्स. तो रेदर देन पुटिंग स्टेटिक लेबल्स, आई एम स्टिल एड्रेसिंग द इश्यू बट विदाउट.
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी. मेरे दो प्रश्न हैं. पहला प्रश्न रिगार्डिंग द लेबल्स, ये आपने बताया कि दूसरे को लेबल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें लेबल किया जाए और तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको आलसी, कामचोर या दुर्वासा बोला जाए तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए?
जब हम कोई हमें लेबल करे, इट कैन बी अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. अगर अगर हमें उसको ट्रांसलेट करना नहीं आता, मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है कि आप प्रभु बहुत इनसिंसियर हो, वन ऑफ द वे ऑफ रिएक्टिंग इज धन्यवाद प्रभु जी, बट टेलिंग मी इनसिंसियर डजेंट हेल्प मी. वुड यू बी विलिंग टू पॉइंट आउट व्हाट आई डिड बाय विच यू आर गिविंग मी दिस लेबल? कि क्या आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि मैंने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से मैं इनसिंसियर हूँ? ट्राई ऑलवेज ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जजमेंट एंड एक्चुअल फैक्ट्स. कि मैं देख रहा हूँ कि ये व्यक्ति पिछले 4 दिन से सुबह 11 बजे उठ रहा है, ये ट्रू है, फैक्ट है. ये व्यक्ति लेजी है, इनसिंसियर है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, इट्स हमारे पर्सनल इवेल्युएशन है. हो सकता है मेरे हिसाब से वो हो, परंतु वो पहले शाम के 4 बजे उठता था, अभी 11 बजे उठ रहा है, कितना सिंसियरली प्रयास कर रहा है. या फिर मैं आपको देख रहा हूँ, ये व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक भग 12 घंटे सेवा करता है. अब एक तरीका है कहने का, ये व्यक्ति बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही मटेरियली मोटिवेटेड है या फ्रूटिव है. दूसरा तरीका कह सकते हैं कि ये बहुत ही सिंसियर है. अगर वो 12 घंटे प्रयास कर रहा है तो वो ओवर एंडेवर कर रहा है, मैं 12 घंटे प्रयास कर रहा हूँ तो मैं बहुत सिंसियर हूँ. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म्स हैं. रेदर देन टॉकिंग इन दीज टर्म्स, बेटर टू टॉक इन जो इवेल्युएशन है वो किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है. तो इवेल्युएशन पे डायरेक्टली जंप ना करके, अगर हम उसे एक स्टेप पहले, क्या उसने व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया, या क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या मेरे बारे में अगर लेबल दिया जा रहा है तो उन्होंने मेरे बारे में क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज जैसे किसी का आपने फोटो लेनी हो, एग्जैक्ट फोटो. अब फोटो में बिल्कुल टाइम, प्लेस, सरकमस्टांस क्रिस्टल क्लियर ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें कोई पर्सनल इवेल्युएशन नहीं होती. इसका क्या सोल्यूशन है कि पर्सनल बायसनेस के बेस पर वो जजमेंट बहुत मैटर करता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर? आप में से बताना चाहें क्या इसका सोल्यूशन है?
कृष्णा प्रभुजी, इसमें जो मेरे को लगता है, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमारी जजमेंट हमारे पुराने अनुभव के ऊपर निर्भर करती है, तो हम किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं तो उसको सिर्फ गलत कार्य करते हुए ना देखें, उसको अच्छे कार्य करते हुए देखें. तो जब हम उसके अच्छे कार्य करते हुए भी देखेंगे उसको, तो हमारी जजमेंट पूर्ण रूप से एक तरफा नहीं होगी. हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ, अगर इसमें ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो भक्त अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो उसके अंदर गुण भी हैं, और उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे. जनरली क्या होता है कि हमारे स्वभाव के कारण हम अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ बुराइयों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, और ऐसा अपना परसेप्शन बनाकर फिर उसके ऊपर जजमेंट करते हैं. तो इसीलिए फिर समस्या का मतलब बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है, मतलब समझ है, समझ.
क्योंकि जितने भी इवेल्युएशन है बहुत ही सब्जेक्टिव है. हो सकता है जैसे तभी सौबरी मुनि का प्रसंग बताया गया, ये जो लीलाएं हैं इसलिए है. अगर आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट या फेस ही देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को बता दिया लेजी है मान लीजिए, अब हम उसके जितनी बाकी चीजें हैं उसको नजरअंदाज करके उसका पूरा का पूरा जो लाइफ है वो बस क्या है, लेजी. तो सौबरी मुनि के प्रसंग से या जो अभी स्टोरी बताई ट्री वाली, हर व्यक्ति के लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स या पहलू होते हैं. तो उन सबको जैसे अमृत गौर को बता रहे ओवरऑल कंसिडर करके, एटलीस्ट ये प्रश्न ही पूछना अपने आप में बहुत बड़ा है कि जितना हम अगर इतना इस चीज़ के लिए अगर हम अवेयर हैं तो बहुत ही कॉन्शियस रहेंगे इसको किस प्रकार से हम बोल रहे हैं दूसरे भक्तों से और किस प्रकार से जो हमें बोला जा रहा है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं।
कृष्णा जी मेरा
जिसको प्रसाद के लिए जाना है प्लीज जा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर
मेरा दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार से आपने श्लोक के माध्यम से और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताया काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन च, तो हम जानते हैं कि भौतिक इच्छाएं उसमें अगर हम उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो अग्नि के समान और बढ़ जाती हैं, जैसे उसमें ईंधन डाल दिया गया हो। तो मेरा प्रश्न यही है कि हम इसको बार बार सुनते हैं लेकिन फिर भी प्रयास वही करते हैं और ईंधन उसमें डालते रहते हैं और फिर उसमें असफल होते हैं, तो इसको कैसे, मतलब इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल करने का मौका आता है तो फेल हो जाते हैं, कैसे इसको।
हिस्कृष्ण महात्मा प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे कि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो पुराने अनुभव से हमें हर एक का अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, हर एक के अलग अलग डेंजर एरिया जोन्स होते हैं। अगर मुझे पता है कि वो उदाहरण दे रहे थे कि मान लीजिए अगर मेरे पास पूरी प्राइवेसी है और कंप्यूटर है और इंटरनेट अलग है और रात के 11 बजे के बाद है तो शायद फिसलने का बिल्कुल डर है, तो ये लक्ष्मण रेखा है कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते ही मैं पक्का से पक्का गिरूंगा। तो बेस्ट है कि इस प्रकार का वातावरण बनाए कि वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना हो। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, भगवान कृष्ण खुद इसी श्लोक के बाद इस समस्या का समाधान बताते हैं इस चैप्टर के आखिरी श्लोक में। किसी को याद है? बाय रेगुलेशन दिस लस्ट कैन बी कंट्रोल। हाँ, भगवत गीता का थर्ड चैप्टर भगवत गीता लास्ट वर्स। तो बाय उसमें इसका समाधान बताते हैं किस प्रकार से लस्ट हैंडल किया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये संघर्ष तो है ही है। आज का अनुवाद पढ़े, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़े। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो पूरा का पूरा श्लोक इसे जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इसको विजय प्राप्त करो। और यह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करने।